हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण और शिविका एक साथ मीटिंग में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी करण पूरी तरह व्यावसायिक व्यवहार कर रहा था और शिविका से केवल जरूरी बातें ही कर रहा था। इस अजीब बर्ताव से शिविका को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे भी बॉस की तरह ही व्यवहार करना पड़ रहा था और वो करण को कुछ नहीं कह पा रही थी। वहां इंग्लैंड से दो क्लाइंट भी आए हुए थे, विलियम और मैक्स। गुड मॉर्निंग मिस शिविका, मीटिंग शुरू होते ही उन्होंने कहा। शिविका ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और काम से जुड़ी बातें करने लगी। उन्हें शिविका के ज्वेलरी डिज़ाइन पहले ही बहुत पसंद आ गए थे, जो उन्होंने ऑनलाइन देखे थे। इसके बाद ही उन्होंने शिविका की कंपनी से संपर्क किया था। शिविका ने बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनसे मीटिंग तय की थी। वे लोग खास तौर पर लंदन से सिर्फ मीटिंग के लिए ही आए थे और शिविका की कंपनी के साथ सहयोग करना चाहते थे। शिविका को भी उनका प्रस्ताव बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर उसकी ज्वेलरी भारत के बजाय किसी दूसरे देश में बिकेगी तो उसे चार गुना ज्यादा मुनाफा होगा। भारत में तो पहले से ही उसकी कंपनी की अच्छी खासी बाजार कीमत है, यहां तक कि वो ज्वेलरी डिजाइनिंग की शीर्ष 10 कंपनियों में भी शामिल है। इसलिए शिविका ने उनके साथ सौदा फाइनल कर लिया और दोबारा मिलने के लिए कहा, क्योंकि वे लोग एक हफ्ते के लिए वहां थे। शिविका ने सोचा कि वो दोबारा मीटिंग करके बाकी सारे शक दूर कर लेगी। यू कैन कॉन्टैक्ट माई असिस्टेंट फॉर नेक्स्ट मीटिंग, मीटिंग खत्म करते हुए शिविका ने कहा। इस बीच कई बातें हुई थीं, जैसे कि उन्हें कंपनी के लिए कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइन भी तैयार करने होंगे जो सिर्फ उनकी कंपनी के लिए ही होंगे। वे डिज़ाइन कहीं और नहीं मिलेंगे। इसके लिए वे लोग काफ़ी ज़्यादा राजस्व हिस्सेदारी भी दे रहे थे और डिज़ाइन का पैसा भी काफ़ी ज़्यादा था। शिविका को सौदे में सब कुछ सही लगा और फाइनल करते हुए उसने उन लोगों से हाथ मिलाया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अंकिता और जतिन भी उनके साथ आए थे। अंकिता ने ही सारे ज्वेलरी डिज़ाइन तैयार किए थे, इसलिए प्रेजेंटेशन भी उसने ही दिया था। उसने कई चीज़ें उनके हिसाब से दोबारा डिज़ाइन की और उनमें कुछ बदलाव भी किए। आखिर में जो डिज़ाइन उन्हें पसंद आई वही उनकी कंपनी के लिए बनाने को फाइनल किया दिया और उसी को लेकर सौदे की बात हुई। इस सौदे की कुल कीमत 500 करोड़ भारतीय रुपए थी और इसलिए शिविका बहुत खुश थी। साथ ही 6 महीने का अनुबंध भी था। अभी उस सौदे पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी शिविका को सब कुछ सही लग रहा था। फिर भी वो इस बारे में अपने पिता से बात करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव है। मीटिंग खत्म होने के बाद शिविका उन तीनों के साथ होटल के पार्किंग एरिया में आई। करण इस वक्त भी उनसे आगे चल रहा था। तभी शिविका अपनी जगह पर रुक गई और उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करते हुए वहां से वापस होटल के अंदर चली गई। शिविका को ऐसा करते देख वे तीनों भी अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि अभी तक शिविका ने उनके साथ आने के लिए कुछ नहीं कहा था, और फिर वो वहां से अकेली ही वापस चली गई। इसलिए वे सभी लोग कन्फ्यूज थे, यहां तक कि करण भी। शिविका के अंदर जाते ही करण का मोबाइल फोन बज गया, क्योंकि शिविका ने उसे ही कॉल किया था। हेलो मैम, क्या हुआ? आप वापस कहाँ चली गईं? कुछ भूल गई थीं क्या? कुछ रह गया? करण वहां जतिन और अंकिता से कुछ ही दूर खड़ा हुआ था, इसलिए उसने एकदम व्यावसायिक बात की। जतिन और अंकिता को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना दिखाई दे रहा था कि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा है। जतिन और अंकिता दोनों कार के पास खड़े हुए थे। वे दोनों कार में बैठने वाले ही थे, लेकिन शिविका को वहां ना आते देख वे दोनों रुक गए थे। करण वहां से थोड़ा दूर पर ही खड़ा हुआ था। करण ने फोन कॉल पर भी शिविका को मैम कहकर पुकारा। शिविका बहुत चिढ़ गई और गुस्से में बोली, शट अप करण, तुम्हारी पत्नी हूं मैं, मुझसे ऐसी लापरवाही से क्यों बात कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? शिविका की बात सुनकर करण ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद की और फिर बोला, मैम हमें वापस जाना है, हम सब यहां कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप वापस कहां चली गई? आपने बताया नहीं। पहले तो तुम मुझे मैम कहना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, शिविका ने फिर से उसी तरह गुस्से में जिद करते हुए कहा। उसके इस तरह जिद करने का मतलब करण को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो काफी शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला, मैम बाकी लोग भी यहां हैं, उनके सामने मैं आपको नाम लेकर कैसे बुला सकता हूं? और अगर आपको यहां रुकना है तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस ऑफिस के लिए निकल जाएं क्या? तुम सीरियसली मुझे यहां छोड़कर चले जाओगे करण? शिविका ने बहुत ज्यादा उम्मीद से ये बात पूछी। अब करण से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इतनी देर से वो किसी तरह व्यावसायिक व्यवहार कर रहा था। कॉल पर बात करते हुए वो वहां पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर वो शिविका का नाम लेकर बुलाए तो जतिन या अंकिता में से कोई भी उसे बात करते हुए सुन ले और समझ जाए कि वो शिविका से बात कर रहा है। क्या हुआ है शिविका, तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो, बच्चों की तरह और इतनी असंयमित? इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन को इस तरह जिद करना शोभा देता है क्या? करण ने वहां से बाहर की तरफ आते हुए ये बात बोली। अभी मैं कंपनी की मालकिन नहीं हूं, अभी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, सिर्फ और कुछ नहीं। इसलिए यहां होटल की वेटिंग एरिया में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, शिविका ने करण से कहा। करण भी उसे वहां अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आखिर शिविका क्या चाहती है और ऐसा क्यों कर रही है, ये जानने के लिए ही उसने ऐसे पूछा था। इसके अलावा जतिन और अंकिता भी उन दोनों के साथ चलने का वहां इंतजार कर रहे हैं, और वो उन दोनों को भी वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। तो शिविका की बात सुनकर करण बोला, ठीक है मैं आता हूं, लेकिन ये बताओ कि जतिन और अंकिता, वे दोनों भी वहां रुके हैं, उन्हें क्या बोलना है? उन्हें वापस ऑफिस जाने के लिए बोल दो और बोलो कि मुझे अभी कुछ और जरूरी काम है जिसके लिए तुम मेरे साथ यहां रुक रहे हो, और हम दोनों बाद में एक साथ वहां आ जाएंगे, शिविका ने करण के सवाल का जवाब दिया। करण ने धीरे से ओके कहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो वापस पार्किंग एरिया की तरफ आया। उसने जतिन और अंकिता से ये बात बोली, जबकि जतिन को उनके रिश्ते के बारे में पता है, तो उसने बहुत ही अजीब नजरों से करण की तरफ देखा। करण उससे नजरें चुराता हुआ इधर उधर देख रहा था, लेकिन अंकिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसे लगा शायद कोई महत्वपूर्ण काम आ गया हो अचानक से। शिविका उन्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहती, तो उसने कुछ नहीं कहा। वे दोनों कार में बैठकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। फिर उनके जाने के बाद करण पार्किंग एरिया की लिफ्ट की तरफ आया और वहां से वो सीधा वापस होटल के अंदर आ गया। होटल का वेटिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है, लेकिन करण को नहीं पता था कि वो कहां पर है, इसलिए पहले वो सीधा रिसेप्शन पर गया और रिसेप्शन पर जाकर उसने वेटिंग एरिया कहां पर है ये पूछा। फिर वहां बैठे हुए आदमी ने उसे वेटिंग एरिया का रास्ता बताया और फिर करण सीधा उस तरफ ही जाने लगा, लेकिन अभी भी वो सोच रहा था कि आखिर शिविका ये सब क्यों कर रही है। क्रमशः